भजन संहिता पांच। भजन संहिता चार में तो संध्या की प्रार्थना थी और अब भजन पांच में सुबह की प्रार्थना है। भजन संहिता पांच पद एक से लेकर तीन तक। हे यहोवा, मेरे वचनों पर कान लगा, मेरे ध्यान करने की ओर मन लगा। हे मेरे राजा, हे मेरे परमेश्वर, मेरी दुहाई पर ध्यान दे, क्योंकि मैं तुझी से प्रार्थना करता हूं। हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी, मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोहूंगा। ये भजन भी नेगीनोत पर बजाया जाता था। दाऊद कहता है भजन पांच पद चार से लेकर छह तक, क्योंकि तू ऐसा ईश्वर नहीं जो दुष्टों से प्रसन्न हो, बुराई तेरे साथ नहीं रह सकती, घमंडी तेरे सम्मुख खड़े होने ना पाएंगे, तुझे सब अनर्थकारियों से घृणा है, तू उनको जो झूठ बोलते हैं नाश करेगा। यहोवा तो हत्यारे और छली मनुष्य से घृणा करता है। मैं जब इंग्लैंड में था तब मैं पास्टरों के एक दल से बात कर रहा था और उन्हें कलवरी चैपल के इतिहास की जानकारी दे रहा था कि हमारे आने से पहले वहां लोगों का एक छोटा सा दल था जो वहां आराधना करता था। वे सोच रहे थे कि वहीं रहे या किसी और कलीसिया में चले जाएं। वे केवल 25 लोग थे। वे बहुत निराश थे। चर्च मार्ग पर कोस्टा मिसा में उनका छोटा आराधनालय था। उन्हें 2 वर्ष हो गए थे और वे सोच रहे थे कि अब क्या करें। इस दौरान एक भविष्यवाणी उनके पास आई जिसमें परमेश्वर ने उनसे कहा, चक सिमित यहां आकर तुम्हारा पादरी होगा और कलीसिया आशीष पाएगी। तुम्हारी संख्या उस आराधनालय की क्षमता को पार कर जाएगी। तुम उस टीले पर आराधनालय बनाओगे जहां से समुद्र दिखाई देता है। कलीसिया रेडियो के माध्यम से पूरे राष्ट्र और संसार में चारों ओर जानी जाएगी। 25 मनुष्य निराश होकर छोड़ने के लिए तैयार और फिर ऐसी भविष्यवाणी और उनकी प्रतिक्रिया भी वैसी ही थी जैसे उस अधिकारी की थी जो राजा का मार्गदर्शन करता था। एलिशा ने कहा, कल शहर के दरवाजे पर अनाज 60 पैसे में बिकेगा। उसने कहा, यदि परमेश्वर स्वर्ग की खिड़कियां खोले तो भी क्या ऐसा हो सकता है? ये एकदम असंभव लगता है। भविष्यवाणी में आगे कहा गया, जैसे ही चक वहां आएंगे उन्हें भवन पसंद न आएगा। वो सलाह देंगे कि इसको नया रूप दिया जाए। वे उत्साह से भर गए, चलो करके देखते हैं। इस भविष्यवाणी के बारे में मुझे उन्होंने कुछ नहीं बताया। वास्तव में जब मैंने उन्हें फोन पर कहा, हाँ मैं वहां आऊंगा, उन्होंने दूसरे दिन मुझे फिर बुलाया और कहा, आप परेशानी न उठाएं, हमने छोड़ने का निर्णय किया है और हमने छोड़ दिया था। मैंने कहा, मैंने त्यागपत्र दे दिया है और मैं मार्ग में हूं। पहले रविवार को हम सब रेस्टोरेंट में भोजन करने गए। वहां मेज पर कागज का नैपकिन बिछाकर मैंने उन लोगों से कहा, हमें कलीसिया को नया रूप देना होगा और ऐसा ही मंच के साथ भी करना होगा। मैंने नैपकिन पर रेखा खींचकर आराधनालय का नया रूप समझाना आरंभ किया। उन्होंने मुझे भविष्यवाणी के बारे में नहीं बताया। मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता था, परंतु वे वास्तव में उत्तेजित होने लगे। उन्होंने कहा, अच्छा लगता है, हम इसी सप्ताह आरंभ करें। और मैंने सोचा, ये ठीक है। मुझे इनमें यहां तक एक तीव्र इच्छा दिखाई दी। मैं इंग्लैंड में यही वर्णन कर रहा था और मैंने नैपकिन शब्द काम में लिया। बाद में मेरे मेजबान ने कहा, इंग्लैंड में हम बच्चों के लंगोट को नैपकिन कहते हैं, इसलिए उसने कहा, क्योंकि उन्होंने तुम्हें बच्चे की लंगोट पर योजना बनाते देखा। ये रोचक है कि कैसे अलग अलग संस्कृतियों में शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं। तो भी ये उतना बुरा नहीं है। जब मैं न्यू गिनी में था और मैंने वहां मिशनरी सभा में एक मुहावरे का प्रयोग करना चाहा, परंतु उसके बाद फिर कभी मैंने उसका प्रयोग नहीं किया। जब मैंने सभा के अंत में उन धर्म सेवकों से कहा, वो सहभागिता कैसे हमारे लिए इतनी आशीष भरी हुई सिद्ध हुई, मैंने उनसे कहा, जब से मैं यहां हूं मुझे कद्दू की अपार आशीष मिली है, ये न जानते हुए। न्यू गिनी में आदिवासी एक विशेष अंग पर कद्दू का छिलका ढांकते हैं और वो स्थान हंसी से गूंज गया। मेरे कहने का अर्थ ये है कि कुछ शब्दों का अर्थ समझाने के लिए हमें दूसरी संस्कृतियों के शब्दों का ही प्रयोग करना होता है। मुझे नहीं मालूम खूनी शब्द का क्या अर्थ होता है, परंतु इंग्लैंड में ये गंदा शब्द होता है, इसलिए इब्रानी शब्द का अंग्रेजी अनुवाद अमेरिका वासियों के लिए वो अर्थ नहीं रखता जो एक अंग्रेज व्यक्ति समझेगा, और वास्तव में दाऊद एक अधर्मी के लिए जो व्याख्या देता है वो अंग्रेज व्यक्ति अधिक अच्छे से समझ सकता है। दाऊद ने अपने भजनों में इसे बहुत बार भ्रष्ट और बुरे मनुष्य के लिए प्रयोग किया है, इसलिए दाऊद ने कहा, यहोवा तो हत्यारे और छली मनुष्य से घृणा करता है। ये आपसे ज्यादा इंग्लैंड के लोग के लिए मायने रखता है। भजन संहिता 5:7, परंतु मैं, यहां विचार विपरीत रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। जैसे मैंने बताया, उनकी कविता विचारों के विपरीत अर्थ को या विचारों को जोड़कर एक करने के द्वारा बनाई जाती है। भजन संहिता 5:7-10 तक, परंतु मैं तो तेरी अपार करुणा के कारण तेरे भवन में आऊंगा, मैं तेरा भय मानकर तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा। हे यहोवा, मेरे शत्रुओं के कारण अपने धर्म के मार्ग में मेरी अगुवाई कर, मेरे आगे आगे अपने सीधे मार्ग को दिखा, क्योंकि उनके मुंह में कोई सच्चाई नहीं, उनके मन में निरी दुष्टता है, उनका गला खुली हुई कब्र है, वे अपनी जीभ से चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं। हे परमेश्वर, तू उनको दोषी ठहरा, वे अपनी ही युक्तियों से आप ही गिर जाएं, उनको उनके अपराधों की अधिकाई के कारण निकाल बाहर कर, क्योंकि उन्होंने तुझसे बलवा किया है। इसके विपरीत भजन 5:11, परंतु जितने तुझ पर भरोसा रखते हैं वे सब आनंद करें, वे सर्वदा ऊंचे स्वर से गाते रहें, क्योंकि तू उनकी रक्षा करता है, और जो तेरे नाम के प्रेमी है तुझसे प्रफुल्लित हो। ये एक सुंदर भजन है। जितने तुझ पर भरोसा रखते हैं वे सब आनंद करें। यदि आप अपना विश्वास प्रभु पर रखते हैं तो आपको आनंद मनाना चाहिए, खुशी से चिल्लाना चाहिए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपकी रक्षा करता है। जो तेरे नाम के प्रेमी है तुझ में प्रफुल्लित हो। परमेश्वर चाहता है कि हम अपना रोज का जीवन इस खुशी के एहसास के साथ जीने की चेतना रखें। भजन संहिता 5:12, क्योंकि तू धर्मी को आशीष देगा, हे यहोवा, तू उसको अपने अनुग्रह रूपी ढाल से घेरे रहेगा।